ओम शांति। बाबा का महायज्ञ एक रत्नों की खान है, जहां अनेक अनेक खजाने रतन हैं। उस खान में से एक रतन हम सभी के समक्ष उपस्थित है, जिनके लिए ये बात है, शांत चित्त स्वभाव, दया करुणा की भावना और खास खास ये परम सौभाग्य है कि दादी जी के अंग संग रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है और सारे विश्व में उनके द्वारा सेवाएं पहुंचती है। ऐसे आदरणीय राजू भाई जी का हम करताल ध्वनि से दिल के गहराई से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। दीपक को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती है, उसका प्रकाश ही उसका परिचय होता है। वैसे ही भाई जी का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, उनका जीवन, उनके जीवन का पुरुषार्थ सेवाएं ही उनका परिचय है। फिर भी भाई जी के परिचय में कानपुर से आध्यात्मिक परिवार में, कानपुर के आध्यात्मिक परिवार में आपका जन्म हुआ। 1960 में ईश्वरी विश्वविद्यालय की गतिविधियां आपके लौकिक घर से ही शुरू हुई थी। बचपन से ही योगी पवित्र जीवन जीने का संकल्प आपका था। 1972 से बाबा के महायज्ञ में समर्पित रूप से विभिन्न सेवाएं दे रहे हैं। राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के ग्राम विकास प्रभाग के हेडक्वार्टर के आप कोऑर्डिनेटर हैं। मुख्यालय पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन के फोटोकॉपी विभाग संभालते हैं। पत्र पुष्प, देश विदेश के सेवा समाचार, अव्यक्त इशारे आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। दादी जी के पत्र व्यवहार का कार्य देखते हैं। दादी जी के साथ बहुत ही घनिष्ठ और समीपता के अनुभव का भाग्य आपको प्राप्त हुआ है। चारों दिशाओं में भ्रमण करके विभिन्न आध्यात्मिक सेवाएं तथा महासम्मेलन के निमित्त आप बने हैं। आपको बाबा द्वारा दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त हुआ है। अव्यक्त मूल्यों को संग्रहित करके ज्ञान सरिता, ज्ञान सुमन, ज्ञान के मोती इत्यादि पुस्तक आपके द्वारा लिखे गए हैं। सतत ज्ञान अध्ययन के कारण आपकी बुद्धि गहन और विशाल बनी है, जिससे लाखों आत्माओं को लाभ मिलता है। महासम्मेलन, सेमिनार, अभियानों का कुशल संचालन आप करते हैं। शाश्वत योगी खेती योजना और ग्राम दत्तक योजना, ऐसी सेवाएं भी आप करते रहते हैं। आप उसके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत सुंदर विषय हम सभी के समक्ष और आज के समय अनुसार आवश्यक विषय लेकर आए हैं भाई जी। विषय है संस्कार परिवर्तन एवं व्यवहार शुद्धि। संस्कार परिवर्तन की कितनी आवश्यकता है, जिससे हम मानव से फरिश्ता बन जाते हैं, फरिश्ता से फिर देवता बन जाते हैं। तो इस विषय पर हम सभी लाभान्वित होंगे। मैं नम्र निवेदन करती हूँ आदरणीय राजू भाई जी से, आप हमें लाभान्वित करें संस्कार परिवर्तन एवं व्यवहार शुद्धि इस विषय से। ओम शांति।
ओम शांति। नए संसार की रचना के लिए हम सब नए संस्कार बना रहे हैं। नए संस्कारों के आधार से ही नया स्वर्णिम संसार आता है। बाबा ने हम सबको संस्कार शुद्धि की अनेक विधियां बताई हैं। जितने संस्कार शुद्ध पवित्र होते जाते हैं उतना हमारा व्यवहार भी बहुत श्रेष्ठ और शुद्ध होता जाता है। हम सब जानते हैं संस्कार बने कैसे, कौन से संस्कार थे और वो बदलते बदलते क्या हो गए जिनको फिर से बदलने की जरूरत पड़ी। हम सब आत्माएं अपने अनादि और आदि स्वरूप को अगर देखें तो अनादि स्वरूप परमधाम का और आदि स्वरूप स्वर्णिम सतयुगी दुनिया का कितना पवित्र श्रेष्ठ महान था और उस समय हमारे संस्कारों में कितनी दिव्यता अलौकिकता पवित्रता थी और उसका मूल आधार था आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित थी। देह अभिमान नहीं था, पहले देह का आधार लिया। आत्मा जब सृष्टि मंच पर आई तो देह का आधार लेकर के उसने पार्ट बजाए, लेकिन आधार लिया उसके अधीन नहीं हुई। इसलिए वहां के संस्कारों में दिव्यता अलौकिकता रही। जिस प्रकार का चिंतन है, जिस प्रकार के कार्य व्यवहार में हम सदा रहते हैं, जिनके संग रहते हैं, जिस प्रकार की सेवाएं करते हैं, बार बार करने से, चिंतन में लाने से वो एक संस्कार बन जाते हैं और आत्मा उन्हीं संस्कारों के आधार से ही नया जन्म प्राप्त करती है। जो संस्कार उसने बनाए हैं, एक बार मम्मा के महावाक्यों में आया था कि जो नया शरीर बनता है माँ के गर्भ में जब पिंड तैयार होता है वो आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार उस शरीर का निर्माण करती है। उसी तरह का उसका रूप रंग, उसी तरह का उसका पूरा ढांचा तैयार होता है। संस्कार जितने शुद्ध हैं, पवित्र हैं, निर्मल हैं, सुखदायी हैं, उतना उसे अगला शरीर भी बहुत शुद्ध पवित्र अच्छा मिलता है। इसलिए संस्कारों पर बाबा हम सब बच्चों का बहुत ध्यान खिंचवाते हैं। हम सभी अपने संस्कारों को स्वच्छ पवित्र बनाने की ही मेहनत करते हैं, उसका ही हमारा पुरुषार्थ है। जो भी योग की तपस्या भट्टियां चलती हैं उसके पीछे यही लक्ष्य रहता है कि जो देह विमान के संस्कार बन गए, देह को देखना, देह के बारे में चिंतन करना, देह विमान में आना और उसी देह अभिमान के कारण कई प्रकार के विकर्म, पाप कर्म करना, उन संस्कारों का परिवर्तन हो और वो संस्कारों में ऐसी दिव्यता आ जाए जो हमारे व्यवहार से लोगों को पता चले कि इसके कितने अच्छे संस्कार हैं। क्योंकि कई बार हम बाबा के बच्चे बनते हैं, समर्पित भी हो जाते हैं, लेकिन संस्कारों में शुद्धता नहीं आती। और उसका मूल एक कारण जहां तक मुझे ध्यान पर रहता है, जिस संगत में, जिस कुल में, जिस घर में उसका जन्म हुआ, जिस वातावरण में उसकी पालना हुई, पढ़ाई हुई, जिस संग में वो रहा है, उठा है, बैठा है, उसकी आदतों का निर्माण हो गया और उन आदतों के कारण जो भी कर्म उसने किए वो कर्म संस्कार बन गए और उन संस्कारों को परिवर्तन करना, उसके लिए बहुत मुश्किल लगता है, कहता है नहीं मेरी नेचर ऐसी है, मेरे संस्कार ऐसे हैं। संगम युग पर बाबा अपने बच्चों को संस्कार परिवर्तन करने के लिए ही सबसे पहली विधि बताते हैं, बाबा की मुरली। अगर कोई को अपने संस्कार बड़े शुद्ध और पवित्र बनाने हैं तो बहुत ध्यान से, बहुत अटेंशन दे करके बाबा के महावाक्यों पर चिंतन किया जाए। बाबा के महावाक्य हमें एक समझ देते हैं, परिवर्तन नहीं करते, समझ देते हैं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, किन संस्कारों के आधार से आप देवता थे, दिव्य गुणों से संपन्न थे, और किन संस्कारों के आधार से आप बिल्कुल नीचे आए, आसुरी वृत्तियां, आसुरी संस्कार बन गए। अब उनका बहुत बड़ा परिवर्तन का कार्य संगम के इस थोड़े से समय में हम सबको करना है। 21 जन्म सत्युग त्रेता के अंदर संस्कारों में पवित्रता थी, अलौकिकता थी, नेचुरल एकात्म अभिमानी स्थिति थी, लेकिन जब द्वापर युग शुरू हुआ और आत्मा अपने स्वधर्म को भूल करके देह अभिमान में आई, देह का आधार लेते लेते देह के अधीन हो गई, और अधीन बन करके जो भी उसने चिंतन किया, संकल्प किए, बोल बोले, कर्म किए और बार बार किए, तो वो बहुत बड़े कड़े संस्कार बन गए। इसलिए देह मन के संस्कार, जिसमें उसका विस्तार तो बहुत बड़ा है, लंबा है, आप सब जानते हो, आज हमारी दृष्टि, वृत्ति, बोल चाल, व्यवहार किस प्रकार का है, हर एक अपनी दृष्टि पर ध्यान देता है, देह को देखना, देह के बारे में ही सारा दिन चिंतन करना, कई तो सारा दिन ही देह के बारे में अपनी या दूसरों की सोचते रहते हैं, और आजकल अनेक प्रकार की बीमारियां होने के कारण अधिकतर लोग नए नए थेरापीज बनते जा रहे हैं, थेरापी अपनाते जाते हैं, उसका ही चिंतन करते रहते हैं। आत्मा को पावन बनाना है, आत्मा को पावन बना करके घर चलना है, उसकी बजाय ये खाना, ये नहीं खाना, ये करना, ये नहीं करना, सारा दिन वही चक्कर, वही चर्चा चलती है। देह अभिमान के कारण आत्माएं देह के बारे में ही सारा दिन चिंतन करती। बाबा ने हम सबको आत्म अभिमानी बनाया, और आत्मा को प्योर बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए, उनके संस्कारों को दिव्य बनाने के लिए ज्ञान मुरली दी, ज्ञान चिंतन का खजाना दिया, और कहा बच्चे सवेरे सवेरे अगर इसको अपने जीवन में धारण करो, उसी समझ के अनुसार फिर कर्म क्षेत्र पर कर्म करो, तो संस्कारों में दिव्यता आती जाएगी। पहली समझ मिलती है, और समझ के बाद जब आत्मा महसूस करती है, आप सबने देखा होगा कि कोई कोई को महसूस ही नहीं होता कि ये मेरा बोलना, ये मेरा देखना, ये मेरा करना, ये मेरा व्यवहारिक जीवन लोगों को दुख दे रहा है, परेशान हो रहे हैं, लोग हमसे डिस्टर्ब हो रहे हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से हमसे किनारा कर रहे हैं, लेकिन अपने संस्कार इतने प्रबल हैं, जो उन संस्कारों पर व्यक्ति का अपना ध्यान ही नहीं जाता। अगर कोई ध्यान खिंचवाता भी है तो वो अपना दोष देने निकालने की बजाय दूसरों को, वो भी ऐसे करता है, वो भी ऐसे करता है, वो भी ऐसे करता है। अपने संस्कार परिवर्तन करने हैं, उसके लिए मुझे तपस्या करनी है, उसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना है, उसकी बजाय वो दूसरों को देख करके उनका टीका देता है, उनकी बात का मिसाल देता है कि अभी तक उसके अंदर भी है, उसके अंदर भी है। जैसे कामन संस्कार देह मान वाले हैं, बाबा के बच्चे बनने के बाद भी अगर कोई थोड़ा सा भी कोई बात पर ध्यान खिंचवाता है तो वो उस बात पर अपने आप को सिद्ध करता है। जिद करना, सिद्ध करना, ईर्ष्या करना, अनुमान लगाना, अहम में आना, बहम में आना, ये सब क्या है? ये सब मायावी संस्कार हैं। और ये सब संस्कार, इनका बहुत बड़ा विस्तार है। जो बड़े विकारों के बाल बच्चे हैं ना, उनका बहुत बड़ा विस्तार है। उन संस्कारों में परिवर्तन आए, उसके लिए हमें तपस्या करनी है। लेकिन तपस्या के पहले हमें महसूस करना है कि वास्तव में ये मेरा जो संस्कार है, जो नेचुरल नेचर के रूप में कर्म में आ रहा है, वो ब्राह्मणों का संस्कार नहीं हो सकता। देह को देखना, देह के बारे में सोचना, कटु वचन बोलना, जोर से बोलना, किसी की बात को कट कर देना, तुरंत जवाब दे देना, डिबेट में आ जाना, झगड़ा कर लेना, बहुत बड़े आसुरी संस्कार हमारे बन गए हैं। उनको परिवर्तन करना, और वो तभी परिवर्तन किया जा सकता है जब गहरी महसूसता हो, रियलाइजेशन हो। जब तक कोई महसूस नहीं करता ये गलत है, तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए बाबा की मुरली हमें समझ भी देती है, और अगर कोई व्यक्ति प्यार से, ध्यान से अपने को बदलना चाहता है कि मैं बदल करके देवता बनूं, मेरे अंदर वो दिव्यताएं, वो दिव्य गुण जीवन में नेचुरल आते जाएं, तो वो अपनी ऐसी सूक्ष्म कमियों पर बहुत गहरी नजर रखता है और महसूस करता है कि मेरे इस बोल से, मेरी इस दृष्टि से, मेरे इस कर्म से, मेरी इस चलन से किसी आत्मा को दर्द हुआ, दुख हुआ, डिस्टर्ब हो गई, उसने किनारा कर लिया, संगठन में नहीं आ रही है, ये संस्कार मेरा ठीक नहीं है, उसको महसूस करना बहुत जरूरी है। महसूस करने के लिए बहुत स्वच्छ बुद्धि चाहिए। जब तक बुद्धि में स्वच्छता नहीं आती, जब तक वो एकांत वास नहीं करता। मुझे दीदी जी की एक बात बहुत याद रहती है। शुरू शुरू में जब मैं मधुबन में आया तो संस्कार तो थे स्कूल के बच्चों के। दीदी ने कहा, अगर तुम अपने आप को परिवर्तन करना चाहते हो, इन संस्कारों को खत्म करना चाहते हो, तो उसकी एक अच्छी विधि है, और वो विधि है अपने टीचर, अपने शिक्षक आप खुद बनो। कोई कितना भी सिखाएगा, कितना भी आपको इशारे में कहेगा, आप कभी भी बदल नहीं सकते। कहने से कोई नहीं बदलेता है। इसलिए शायद बाबा ने अभी कहना भी बंद कर दिया है, बहुत कह लिया है, अभी सिर्फ सकास दे रहा है। हम सबको स्वयं स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए एकांत में बैठ करके अपने आप से बातें करना, अपने आप को सिखाना, अपने आप के शिक्षक बनना, अपने को पढ़ाना। क्या पढ़ाना? इतनी सारी विश्व में से बाबा ने अगर हमें चुना है, बाबा की नजर हमारे ऊपर पड़ी है, और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय जिसकी एम ऑब्जेक्ट, जिस पढ़ाई का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, और उस पढ़ाई के लिए हमने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रवेश किया है, दाखिला लिया है, और मैं रोज जाता हूँ, समय देता हूँ, शक्ति देता हूँ, सफल कर रहा हूँ। लेकिन क्या अपने लक्ष्य के प्रमाण मेरे संस्कारों में परिवर्तन आया है? अगर मेरे अंदर ये लक्ष्य है कि मुझे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, लक्ष्य ये है हम सबकी पढ़ाई का, और उस पढ़ाई के अनुसार, उस लक्ष्य के प्रमाण मेरे जीवन में अभी तक कौन कौन से लक्षण आए हैं? इस बार एक अचानक मुझे संकल्प आया। जनवरी मास का होमवर्क तैयार कर रहा था, मैंने कहा हर साल हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा ऐसे थे, ब्रह्मा बाबा ऐसे थे, ब्रह्मा बाबा ने ये किया। तो हमने एक ग्रुप को एक होमवर्क दिया और हमने सबने चेक किया उसको चार्ट के रूप में कि अगर ब्रह्मा बाबा ऐसे थे तो दूसरे तराजू में मैं अपने को रखूं, मैं कैसा हूं, मैं उनके समान कितना कितनी परसेंट में पहुंचा हूं। क्योंकि बाबा बार बार मुरलियों में कहते हैं बच्चे संपन्न बनो, समान बनो, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, उनके समान बन जाओ। तो क्या कभी अपने आप से एकांत में बैठ करके ब्रह्मा बाबा की जीवन, ब्रह्मा बाबा के चरित्र, ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं जो बाबा ने खुद सुनाई हैं, साकार में नहीं सुनाई, लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए तो अव्यक्त होने के बाद शिव बाबा ने भी साक्षी होकर के ब्रह्मा बाबा की अनेक विशेषताओं का वर्णन किया। ब्रह्मा बाबा ने कैसे समर्पण किया, ब्रह्मा बाबा का निश्चय कितना अटूट था, अटल था, ब्रह्मा बाबा ने कितना सहन किया, कैसे सबके बीच में रहते हुए पालना देते हुए जिम्मेवारियां संभालते हुए न्यारे रहे, प्यारे रहे, साक्षी रहे, उपराम रहे। बहुत सारी विशेषताएं ब्रह्मा बाबा की सामने आ गई और मैंने कम से कम 62 विशेषताएं उसी समय तैयार की। मैंने कहा सब ध्यान दो और इसके अनुसार चेक करो कि अगर ब्रह्मा बाबा, मान लो ब्रह्मा बाबा का बहुत मुरली से बहुत प्यार था, बाबा हमेशा, आप सब जानते हो, कोई भी बच्चा साकार के समय, बाबा के समय बाबा से मिलने आते थे, तो आते ही बाबा से अगर मिलने पहुंच गए तो बाबा कहते थे बाबा पहले नहीं मिलेगा, पहले बच्चों को बोलो मुरली पढ़ करके आए, आज की मुरली पढ़ें उसके बाद बाबा से मिले। बहुत प्यार था बाबा की मुरली से। शायद आप लोगों ने सुना होगा, कहानियां सुनाती मेरी दादियां विशेष करके, जब पहली पहली टेप मशीन मधुबन में आई है 62-63 में, इतनी बड़ी मशीन थी और बाबा कभी छोटा सा परिवार था, 10-12-20 भाई बहने आगे होते थे बाबा के, तो बाबा माइक नहीं लगाने देता था, कहता था बच्चे पढ़ाई कोई माइक पर थोड़ी होती है। और टेप मशीन आई तो हमारे दादा थे चंद्रहास दादा, उनकी ड्यूटी थी टेप मशीन चलाने की, गीत बजाने की। पहले तो ग्रामोफोन था उस पर बजता था, फिर टेप मशीन जब आई तो बाबा माइक नहीं लगाने देता, इसलिए रिकॉर्डिंग कैसे करें। तो एक दिन दादा ने छिप करके छोटा सा माइक बाबा के कुर्ते के नीचे ऐसे रख दिया और पहली मुरली रिकॉर्ड हुई। जब मुरली रिकॉर्ड हुई तो बाबा को वो मुरली सुनाई, बाबा आज आपने ये मुरली चलाई है। बाबा ने मुरली सुनकर के कहा रे बच्ची, ये बच्ची तो, टेप के लिए कहा, ये बच्ची तो हूबहू रिपीट करती है, हूबहू रिपीट करती है, बहुत अच्छी है। ऐसा करो ये बच्ची ऐसी टेप मशीन ले करके सभी दादियों को, सब बड़ी बहनें जहां जहां रहती हैं उनको टेप मशीन दो और बाबा की मुरली सबको भेजो। बाबा का मुरली से इतना प्यार कि मुरली रिकॉर्ड हुई है। उस समय दादा विश्वरतन को ट्रेन से ही पूना में, सबसे पहले जानकी दादी रहती थी, उनको टेप भेजी। उनका बहुत मुरली से प्यार था, जैसे बाबा का प्यार था ऐसे मैं दादी जानकी जी का भी बहुत प्यार था। तो बाबा की मुरली उन्होंने सुनी, पढ़ी, जब सुनी तो लगा कि बाबा की डायरेक्ट मुरली हमको सुनने को मिली। दादी ने सबको डायरेक्शन दे दिया, सबको टेप मशीन लेकर के दो, खरीद के दो जो दे सकते हो। मेरा कहने का भाव आप समझ रहे होंगे कि बाबा ने बाबा की, शिव बाबा की मुरली पर इतना ध्यान दिया, इतना बच्चों का ध्यान खिंचवाया। अगर हम अपने संस्कारों में दिव्यता लाना चाहते हैं, सचमुच परिवर्तन करना चाहते हैं, हैं सब में कुछ न कुछ, बाबा ने मना किया है कमियों का वर्णन नहीं करो, कमियां नहीं देखो, लेकिन कई ऐसे संस्कार हैं जो अभी भी सेवा केंद्रों पर कई जगह पर प्रॉब्लम बनती हैं, समस्याएं आती हैं। उनका मूल कारण है संस्कारों का टकराव, तेरे मेरे की भाषा का प्रयोग, और उसमें भी एक साधारण लैंग्वेज, साधारण बोल चाल। किसी का अपमान कर दिया, किसी की बात को कट कर दिया, किसी को थोड़े से कट्टु वचन बोल दिए, जोर से बोल दिया, और वहीं पर वो संस्कार आपस में टकरा गए, दो मते हो गई। एक मुरली अभी भेजूंगा मैं थोड़े दिन के बाद, आपको सुनाता हूं पहले से। मम्मा की मुरली है। मम्मा ने कहा, जिसके जो संस्कार हैं पिछले 63 जन्मों में, देहाभिमान के कारण जिसने भी अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया, बढ़ते गए हैं, और उसके कारण कई प्रकार के विकर्म हुए हैं, उसका बहुत कड़ा हिसाब किताब हर एक के साथ अभी तक भी है। कुछ उसी जन्म में हमने चुकतू किए होंगे, कुछ हिसाब किताब आए होंगे, सजा मिली होगी, कुछ किया होगा, लेकिन कुछ न कुछ हरेक के साथ ब्राह्मण बनने के बाद भी पिछले जन्मों के कुछ संस्कार विकर्मों का बोझ अभी भी उन आत्माओं पर है, और उसके कारण बाबा के बच्चे बनने के बाद योग नहीं लगता है, खुशी नहीं होती है, सेवाओं में उमंग उत्साह नहीं रहता है, परिवार में जो अपनेपन की अनुभूति होनी चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए, इतना प्यारा परिवार, इतना अच्छा संगठन, निस्वार्थ भावनाएं, उसका अनुभव नहीं होता। ब्राह्मण जीवन में आने के बाद भी उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता, परमानंद का अनुभव नहीं होता। हैं, मुरली सुनते हैं, क्लास करते हैं, सेवाएं भी करते हैं, लेकिन जो सच्चा ब्राह्मण बनने का सुख है, जो सच्चा आनंद है, जो सच्चा रस है, प्रभु मिलन का जो सुख है, उससे अभी भी वंचित हैं। और उसे वंचित होने का मूल कारण है कुछ न कुछ रहे हुए हिसाब किताब संस्कार अभी भी प्रबल हैं, और वो बार बार अपना काम करवा देते हैं। कर्मेंद्रियां उन संस्कारों के अधीन होकर के कुछ न कुछ कर बैठती हैं, और वो विकर्म होने के कारण सजा के रूप में उन्हें अनुभूति नहीं होती। ये मम्मा की बात सुना रहा हूं। इसके लिए हम सबको बोझ नहीं लेना, भारी नहीं हो जाना। कई बार बाबा कहते हैं ना, टेंशन का भी टेंशन हो जाता है, टेंशन दिलाने के लिए मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो ये थोड़ा सा संगम का समय मिला हुआ है, इस संगम के समय, अमूल्य समय में हम सबको अपने आप पर पूरा पहरा देना चाहिए, पूरा पहरा। कोई दूसरा मेरे पर पहरा दे इसकी बजाय मुझे अपने पर पहरा देना है कि मेरे अभी तक भी ऐसे कौन से संस्कार हैं जो मुझसे विकर्म करा देते हैं, संकल्पों में, बोल में, स्वप्न में, कर्म में, अभी तक भी परवश स्थिति बना देते। मुझे उन संस्कारों को चेंज करना है। अब उसको कैसे चेंज करेंगे, कोई विधि है? उसकी एक बहुत अच्छी विधि है, तपस्या। तपस्या माना ऐसे नहीं बैठ जाओ जा करके, आसन लगा करके, खाना पीना छोड़ करके, सेवाएं छोड़ करके कुटिया में बैठ जाओ, इसके लिए ये तपस्या नहीं। तपस्या के दो बहुत गहरे अर्थ बाबा बताते हैं। एक तपस्या माना दृढ़ता संपन्न संकल्प, जो संकल्प करना कुछ भी हो जाए करना ही है। जैसे कोई चीज नहीं खानी है तो नहीं खानी है, कुछ चीज नहीं करनी है तो नहीं करनी है। लौकिक जीवन में उसको जिद कहते हैं, और अलौकिक में उस भाषा में दृढ़ता कहते हैं। उस दृढ़ता में जो बहुत मजबूत है, दिव्यता जिसके अंदर है, वो संस्कार नहीं, जिद वाले। लेकिन जिस संस्कारों में हमारी उन्नति है, जो संस्कार हमें देवता बनने में मददगार बनते हैं, उनको धारण करने के लिए मुझे कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ सहन करना पड़ेगा। हर एक को इस बात पर बहुत अभ्यास करना चाहिए। मान लो मेरा क्रिमिनलिटी का संस्कार है, किसी को भी देखते हैं उसकी देह पर ध्यान चला जाता है, विकारी संकल्प विकल्प आ जाते, कई प्रकार की वासनाएं उत्पन्न हो जाती है, कई प्रकार की अभी तक चाहनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये चाहिए ये चाहिए, कामनाएं हैं। व्यक्ति कितना कामनाओं के पीछे भटक रहा है, ब्राह्मण बना है, इतनी सेवा के चांस मिल रहे हैं, फिर भी मुझे ये सीट मिल जाए, ये स्थान मिल जाए, इनका सम्मान हो रहा, मुझे डिग्री मिल जाए, मेरा भी सम्मान हो जाए, मुझे कम से कम कॉन्फ्रेंस में एक स्पीच मिल जाए। बहुत सारी कामनाएं अभी भी बीके बनने के बाद भी नहीं छोड़ती हैं, सूक्ष्म कामनाएं हैं, छोटी छोटी। उन कामनाओं का त्याग कर दिया, घर का, परिवार का, दुनियादारी का, लेकिन संगठन में आने के बाद ऐसी सूक्ष्म कामनाएं, इसको चांस मिलता है मेरे को क्यों नहीं मिलता है, मैं इससे अच्छा पढ़ा लिखा हूं, अच्छा क्लास कराता हूं, अच्छी टॉपिक पर चिंतन करता हूं, मेरा प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है, लेकिन मुझे कोई चांस नहीं देता। उस चांस लेने के लिए उसका योग नहीं लगता है, बार बार आगे पीछे घूमता है मुझे चांस मिल जाए। क्या ये संस्कार अच्छा है? उत्तृप्ति का, भरपूरता का, संपन्नता का संस्कार है। हमारे ब्रह्मा बाबा ने कभी भी चांस लिया नहीं, लेकिन चांस सबको दिया, बच्चों को आगे किया। हर बात में बच्चे आगे हैं, बच्चे आगे हैं, बच्चे आगे हैं। आगे करने वाला कभी पीछे नहीं रहता, वो नंबर वन बन गए। हम लोग आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना चाहते हैं, पुल करते हैं, खींच लेते पीछे से, कुछ नहीं करते, पुल करते, खींच लेते अपनी तरफ। ध्यान देना, हम सबको ऐसे संस्कारों को सूक्ष्म चेक करना है। कितनी आत्मा हर बात में तृप्त है, भरपूर है, संपन्न है, संतुष्ट है। जब हम कहते हैं पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, जो पाना था सब मिल गया, बाबा मिल गया, परिवार मिल गया, इतना ऊंचा ज्ञान मिल गया, इतनी श्रेष्ठ खजाने मिले, इतना अच्छा परिवार मिला, इतनी सब प्राप्तियां बाबा ने हमें करा दी, फिर भी ये हद की कामनाएं क्यों? उन पर चेक करो और उनको बहुत, उस संस्कार को जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वासनाएं हैं, बहुत सूक्ष्म संस्कार आत्मा के अंदर कभी कभी प्रकट होते हैं, सदा नहीं होते हैं। जैसे बाबा कहता है ना, कोई बीज को अगर आपने भूना नहीं है, जलाया नहीं है, सिर्फ उसको अपने घर में, अपनी कोठरी में, अपने किसी चीज में बंद करके रख दिया, वो रखा हुआ बीज 10 साल, 15 साल, 20 साल भी सेफ रह सकता है, भले कीड़े न लगे। लेकिन जब वो बीज बाहर आएगा, जब उसको हवा मिलेगी, पानी मिलेगा, मिट्टी का संग मिलेगा, कुछ भी मिल जाएगा, तो वो बीज अंकुरित हो सकता है। लेकिन अगर उसको जला करके रखा है, भून दिया है, कुछ भी करके, ऐसा वो बीज कितना भी पानी मिले, कितनी भी धूप मिले, कितनी भी मिट्टी मिले, कभी अंकुरित नहीं होगा। हमारे संस्कार बार बार उछलते तब हैं जब हमने तपस्या के बल से उन संस्कारों को योग अग्नि में जलाया नहीं है, भस्म नहीं किया। मुरली सुनते हैं, अच्छा संग करते हैं, ब्रह्मा भोजन करते हैं, सेवाएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो दृढ़ता का संकल्प, ये मेरा नेगेटिव संस्कार है, इसे मुझे खत्म ही करना है, कुछ भी हो जाए, इस ये हमारे ब्राह्मण जीवन में फरिश्ता बनने में बहुत बड़ा विघ्न है। खुद महसूस करो, खुद रियलाइज करो, कोई नहीं कहेगा। अभी वो समय चला गया जब कोई कहता भी था, हम लोग अगर एक दिन योग नहीं करते थे, कोई अलबेले हो जाते थे, मुरली क्लास में नहीं आते थे, तो हमारी हाजिरी लगती थी। एक दिन की बात सुनाता हूं, हमारी दीदी दादी बड़ी रमणीक थी ना, छोटे छोटे हम सब थे, 20 साल, 25 साल, 21 साल वाले, तो नेचुरल है, नींद तो आती है, सो जाते थे, हमारी जो दिनचर्या बनी हुई है वो दिनचर्या में दीदी कहती थी कि अगर ब्राह्मण जीवन में कोई आत्मा अमृत वेले नहीं उठती है और मुरली क्लास नहीं करती है तो ब्राह्मण बनी क्यों। इसलिए अगर ब्राह्मण बने हैं तो ये कम से कम दो बातें तो गांठ बांध ले, कभी मिस नहीं करनी है। तो एक दिन की बात सुनाता हूं मैं, बड़ी रमणीक है। हमारी दीदी दादी नजर रखती थी अमृत वेले के योग में, कौन आया, कौन बीच में उठा, कब कहां गया, किस तरह का योग किया उसने, क्योंकि दीदी जी खुद योग कराती थी सामने बिठा के बैठ करके। तो दादी को एक दिन कहा, दादी जी पीछे बैठती थी, दीदी आगे बैठती थी, दो हमारे वो थे इंजन, एक सामने से दृष्टि देता है एक पीछे से देखता है। तो दीदी ने कहा, दादी ये आजकल पांडव जो है ना भाई लोग, ये बीच में उठ जाते हैं, कोई कोई नहीं आते हैं, आप इनकी चेकिंग करो, ये करते क्या है। तो दादी जी ने मोहिनी बहन जी को लिया साथ में और लाइट हाउस, वहां पांडव भवन में बिल्डिंग है जिसका नाम लाइट हाउस है, जिसमें हम 25 भाई रहते थे। तो दादी ने वो जो माताएं घूंघट निकालती है ना, घूंघट ऐसे निकाला, मोहिनी बहन ने भी ऐसे मुंह ढका और दादी ने भी, और दोनों ही वो सीढ़ी से ऊपर लाइट हाउस की सीढ़ी पर चढ़ने लगी, आने लगी। तो हम तीन चार भाई थोड़ा पहले उठ करके मुंह धुलाई कर रहे थे, बाहर ही हमारी वास बेसन थी उसमें खड़े थे वहां। तो हम लोगों ने जोर से आवाज लगाई, अरे माताएं तुम इधर नहीं आओ, ये भाइयों का क्षेत्र है। तो दादी ने देखा, ऐसे इशारे में बोला, चुप, कोई बोलेगा नहीं। अने आज चेकिंग हो गई, 4:30 बजा होगा सुबह का। और दादी आई, कहती, अच्छा कौन कौन लेटे हैं, कौन सोए हुए हैं, कौन क्या कर रहे हैं, मेरे को नाम नहीं पता है, आप नोट करके मेरे को बताओ, साथ साथ चलो मेरे। तो हम तीन चार भाई दादी जी के साथ साथ सब कमरों में गए, 5 कमरे थे और तीन चार एक एक दो दो सब जगह सोए थे, सबका नाम नोट किया, कहा जगाना नहीं किसी को। अब सोए हुए थे, एक सीढ़ी से आई और सबके नाम नोट किया, लिस्ट लिया, चिटकी लिया और चुपचाप दूसरे सीढ़ी से उतर गई। उतरने के बाद दीदी को दे दिया जाकर, दीदी ये ले लो, बिस्तर पर थे। दीदी ने क्लास के बाद, मुरली के बाद, नाश्ते के बाद घंटी बजाना शुरू किया, बेल बजाना, पहरे वाले को बुलाते, उस भाई को बुलाओ, उस भाई को बुलाओ। अब जिसका नाम आता था वो समझ तो गया कि आज शिक्षा मिलेगी। तो सबको बुला के बहुत प्यार से, तुमने नाश्ता किया, तुम नकिले घूम के आए, अच्छा ठीक, तबीयत ठीक है, ऐसे 3-4 प्रश्न पूछ करके। अमृत वेले सोए हुए थे, अमृत वेले का महत्व तो नहीं पता है, बाबा के घर में सफेद ड्रेस में नौकर नहीं चाहिए, बहुत कड़ा शब्द है ये, नौकर नहीं चाहिए। आप भोजन करो, सफेद ड्रेस लो और सेवा करो, ऐसी सेवा नहीं चाहिए। सेवाधारी ऐसे चाहिए जो ज्ञानी हो, योगी हो, जिनकी अपनी निजी धारणाएं हो, जिनके संस्कार शुद्ध और पवित्र हो। तो वो दिन मुझे याद आता है कैसे प्यार से शिक्षा दी गई और उसके बाद बहुत सुधार आता है सब में। और आज कितने लोग सोए रहेंगे अमृत वेले, कौन करता है या नहीं करता है किसको पता है, कोई मुरली सुनता या नहीं सुनता वो भी नहीं पता है। अभी कहने का मेरा मतलब है कि अपने आप को खुद पढ़ाओ, अपने शिक्षक बन करके अपने संस्कारों पर कड़ी नजर रखो कि मुझे ये अपवित्र संस्कार, ये नेगेटिव संस्कार, ये साधारण संस्कार जो ब्राह्मण से देवता बनने नहीं दे रहा है उसे समाप्त करना है। बहुत सरलता का संस्कार, नम्रता का संस्कार, मधुरता का संस्कार व्यवहार के अंदर आ जाए, सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं कहें हाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन जिन आत्माओं के साथ हम सेवाएं कर रहे हैं, जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, कम से कम उनके साथ उनके व्यवहार से, उनके कर्मों से, उनके बोलचाल से कभी भी कोई डिस्टर्ब न हो। इतना सम्मानजनक बोल व्यवहार में अगर है, कई लोग दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं कि ये मुझे सम्मान दे, ये मुझसे प्यार से बात करे, ये मुझे कम से कम प्यार से देखे तो, लेकिन खुद के व्यवहार पर कभी ध्यान नहीं देते मैं कैसा कर रहा हूं। कई चीजें ऐसी हैं जो मांगने से नहीं मिलती, देने से मिलती हैं। हम सबको ये सब अपेक्षाएं छोड़ देनी है कि मुझे कोई पूछे, मुझे कोई सम्मान दे, मुझे कोई प्यार करे, मुझे कोई दृष्टि दे। बाबा कहता है तुम दाता बन जाओ, तुम देना शुरू कर दो। तुम दाता बन जाओगे, तुमको अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। हमारे इस विद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता है जो किसी को भी मांगने की छुट्टी नहीं है, कोई चीज किसी से नहीं मांगनी, भगवान से भी नहीं मांगनी। बाबा ने हर एक बच्चे को खूब दिया है, सच्चा है, वारिस है, सपूत है, बाबा के वर्षे का मालिक है, अधिकारी है, उसको कुछ भी मांगना नहीं है। जो कुछ बाबा से हमने लिया है हमें सबको देना है, बस देते चलो, देते चलो। इतना ज्ञान, इतने गुण, इतनी शक्तियां बाबा ने दी हैं, कम से कम और कुछ नहीं दे सकते हो? दो शब्द मीठे बोल दो। बाबा कहता है मीठे बोल की मिठाई खिला दो एक दूसरे को, स्नेह से देख तो लो, स्नेह से दृष्टि दे दो, स्नेह से बोल दो। स्नेह एक बहुत बड़ी शक्ति है जिससे वो आत्मा समझ जाती है, परिवर्तन हो सकती है। तो व्यवहार शुद्धि के लिए संस्कार परिवर्तन की बहुत जरूरत है, और संस्कारों में परिवर्तन तभी आएगा जब हम बहुत अच्छी तपस्या करेंगे। एक तपस्या है दृढ़ता संपन्न संकल्प, और दूसरी तपस्या है नेगेटिविटी से वैराग्य। जब तक किसी आत्मा को सच्चे दिल का, बेहद का वैराग्य नहीं आएगा, तब तक उसके संस्कार चेंज नहीं होंगे, जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। इसलिए वैराग्य की बहुत जरूरत है। कभी भी कोई भी संस्कार अब परिवर्तन करना है, महसूस किया, समझ मिली, महसूस किया, तपस्या की, और उसके लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, स्थान छोड़ना पड़े, सेवाएं छोड़नी पड़े, कुछ भी हो, मुझे चेंज होना है। जब ऐसा दृढ़ता का संकल्प हम कर लेते हैं, तब जो अदिव्यता आई है, अस्वच्छता आई है, वो संस्कार धीरे धीरे खत्म होते हैं, परिवर्तन होते हैं। आप सभी एक चेकिंग करना, जिस दिन मैं बाबा का बच्चा बना उस दिन मेरे अंदर क्या क्या संस्कार थे, और जितने समय से मैंने ज्ञान लेकर के 8 साल, 10 साल, 15 साल, 5 साल जो भी हुआ समय, उसके बीच में अभी तक बाबा की मुरली सुनते हैं, शुद्ध अन्न खाते हैं, अच्छा संग करते हैं, उन संस्कारों में कितना परिवर्तन आया है, और उसकी निशानियां आपको पता चलेंगी। जो बार बार संकल्प विकल्प में, विकारी संकल्पों में परिवर्तन हो जाते, जो स्वप्नों में अशुद्धता आ जाती है, कई प्रकार के बोल जब कभी किसी के लिए भी व्यर्थ निकल जाते हैं, अपशब्द निकल जाते हैं, जब कभी मूड ऑफ हो जाती है, पता चलता है अभी तक मेरे संस्कारों में दिव्यता नहीं आई। छोटी छोटी बातें कही तो इतना फील कर लेते हैं, जो बातों को नहीं भूल सकते लेकिन बाबा को भूल जाते हैं। ध्यान देना, बातें बातें हैं, संगठन जहां है, जहां परिवार है, जहां हम पिछले अनेक जन्मों में साथ रह करके एक दूसरे के साथ हिसाब किताब बनाते हुए पहुंचे हैं, और थोड़े समय में चुकतू करना है, तो आएंगे तो वैरायटी, संस्कार, बातें सब कुछ आएंगी, लेकिन उन बातों की परवाह नहीं करनी है। मुझे अपनी स्थिति एकरस, अचल, अडोल, खुशनुमा बना करके रखनी है। कोई कुछ भी करे, कुछ भी कहे, ब्रह्मा बाबा ने किसी की बातों की परवाह नहीं की। सामने सामने बच्चों ने गाली दी, बच्चे निर्दोष हैं, इनको पता नहीं है। चलो आज गाली देते हैं, सब पहचानेंगे तो फूल चढ़ाएंगे। आज फूल चढ़ा रहे हैं ना सभी, तो हम सब देखें कि अगर कोई बात हो जाए संगठन में, परिवार में, कई बार अज्ञानियों की बात को हम महसूस नहीं करते, वो तो समझते हैं समझ नहीं, अज्ञानी है, उनको हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर कोई ज्ञानी आत्मा वो ऐसा कर लेती, कितनी समझदार हो के कोर्स कराया, कोर्स कराता है, भाषण करता है, क्लास कराता है, फिर भी ऐसे चलता है, ऐसे बोलता है, उसकी बात को सहन नहीं कर पाते और फिर अपनी मूड खराब कर लेते, उसे किनारा कर लेते, सेवाएं छोड़ देते, उमंग उत्साह खत्म हो जाता, कहीं तो पढ़ाई ही छोड़ देते। बाबा कहता तुम अपनी तकदीर को लकीर क्यों लगा रहे हो, रूठे आपस में और बाबा की पढ़ाई को और बाबा के साथ को छोड़ दिया। इसलिए हमें अपने संस्कारों में वो सरलता, वो मधुरता, वो नम्रता लानी है, और उसके लिए बड़ी अच्छी बाबा की रोज की मुरलियां चल रही हैं। अगर बाबा की मुरलियों पर, विशेष वरदान और स्लोगन पर भी आप हम ध्यान दें, तो संस्कारों में वो दिव्यता अपने आप आ जाती है, संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। दो तीन दिन से आप सुन रहे हो, मैं दो तीन बातें रिपीट करता हूं। एक दिन बाबा ने मुरली चलाई, बच्चे आप विशेषता देखने का चश्मा पहनो, हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है, और मान लो उसके अंदर नहीं भी है, कमी भी है, आप विशेषता देखने वाला चश्मा पहन लो तो जैसे धूप में सूखी घास को भी अगर हरा चश्मा पहन के हम जाते हैं तो सूखापन भी हरे में बदल जाता है, दिखाई देता है ऐसा। हम बच्चों को बाबा ने कितनी सुंदर ट्रेनिंग दी है, कहते इसके अंदर कमियां हैं तो दिखाई देंगी ना, आंख थोड़ी बंद कर लेंगे। बाबा कहते आंख नहीं बंद करो, आंख पर चश्मा लगा लो, चश्मा लगा हुआ होगा अगर विशेषता देखने, कुछ तो विशेषता है, ऐसा थोड़ी कोई विशेषता है ही नहीं किसी के अंदर। बाबा ने एक बार कहा था मेरे बच्चों में 36 में से अगर 35 कमियां हैं तो भी बाबा उसकी एक विशेषता को देख करके उसको विशेष बना देता है, वो 35 कमियों पर ध्यान नहीं देता, उसके अवगुणों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन एक विशेषता मेरे बच्चे में है, कितना रहम दिल है। कहता बच्चे इस विशेषता के बीज को तुम इस सेवा की धरने में लगा दो, वही विशेषता आपके सब कमियों को समाप्त कर देगी, आपको गुणवान बना देगी। हम सभी भी इसी तरह से बाबा के बने हैं, ऐसे थोड़ी कमियां लेके नहीं आए, सब में थी हैं, लेकिन विशेषताएं जो बाबा ने दी हैं अगर हमने उनको सेवा में लगाया है तो वो विशेषताएं सेवा में लगते लगते एक विशेषता सर्व विशेषताओं को अपने आप ले आती है। उस दिन बाबा की मुरली सुनी, फिर दूसरे दिन सुना बच्चे सेवा में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो कोई भी सेवा निमित्त भाव से करो और नम्र चित्त होकर के करो। नम्रता आपके जीवन का श्रृंगार है, ये आपका गुण होना चाहिए। क्यों करने का अभिमान आता, मैंने किया, मैं करता हूं, मैं नहीं करूंगा, कोई नहीं करेगा, ये जो मैंपन है ये अहंकार है और यही संस्कारों की टक्कर का मूल कारण है। अगर हम अपने संस्कारों का दिव्यीकरण, शुद्धिकरण करना चाहते हैं तो हमें अपने मैं और मेरेपन को समाप्त करना पड़ेगा, मैं और मेरेपन से मरना पड़ेगा। मैं जब आता है तो मैं तो एक आत्मा हूं, और जब मेरा आता है तो मेरा एक बाबा है जिसने हमारे को इतनी विशेषताएं दी हैं, देने वाला दाता वो है। न हमें अपनी विशेषताओं का अभिमान हो और न मुझे किसी की विशेषताओं से ईर्ष्या हो। ये संस्कार अगर हमारे परिवर्तन हो गए तो हम अपने दिव्य संस्कारों से अपने संगठन के बीच में बहुत प्यार से मिलजुल करके रहेंगे, एक दूसरे से उसी स्नेह और सम्मान से व्यवहार करेंगे, कभी भी टकराव की स्थिति नहीं बनेगी, कभी भी मूड खराब नहीं होंगे, कभी भी खुशी गायब नहीं होगी, उमंग उत्साह कम नहीं होगा। हम सब सदा ही उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहेंगे। बाबा अभी चाहता है मेरे बच्चे अब अपनी ऐसी स्थिति बना लें जो आने वाली परिस्थितियों को सहज पार कर सके। हम सब बाबा के घर में केवल देखने, सेवा करने, मधुबन में बाबा से मिलने नहीं, लेकिन हम आए हैं अपने संस्कारों का शुद्धिकरण करने, अपने संस्कारों को दिव्य बनाने। जो भी संस्कारों में छोटी बड़ी कमी हो, बाबा के कमरे में जाना, कल बाबा का दिन है, भले बाबा साकार में या व्यक्त रूप में दादी के तन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाबा की संपूर्ण हाजिरी का हरेक को अनुभव होता है। बाबा उनको दृष्टि देते हैं, सकाश देते हैं, अपने बच्चों को जिस तरह के प्रश्न हैं उनका उत्तर देते हैं। आप सब उसी भावना से, उसी प्यार से बाबा की अनुभूति करना, और जो ऐसा संस्कार लगता है मेरे इस ब्राह्मण जीवन की उन्नति में रुकावट डाल रहा है, उस संस्कार को कागज पर लिख करके बाबा की एक भंडारी रखी होती है पत्रों की, उसमें डाल देना, बाबा आप ये ले लो और मुझे इससे संस्कार से मुक्त कर दो। फिर पवित्रता, दिव्यता, अलौकिकता के आधार से हमारे व्यवहार में जो शुद्धता आएगी, सबके साथ मिलजुल करके हम रह सकेंगे, सबके प्रिय बन जाएंगे, सबका सम्मान मिलेगा और सब सहयोग देंगे, सबके सहयोग से सुखमय संसार बनेगा। एक अगर अलग है, दूसरा अलग है, एक कीमत अलग है, दूसरे कीमत अलग है, तो बाबा कभी कभी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मतों में तो भेद हो सकता है, लेकिन कम से कम मन भेद तो नहीं करो। मन में भेद नहीं आना चाहिए, और वो भेद तभी समाप्त होगा जब संस्कार बड़े सरल, मधुर, नम्रचित वाले बन जाएंगे। तब व्यवहार की वो शुद्धता, जो बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे तुम्हारी चलन से, तुम्हारे चेहरे से बाबा प्रत्यक्ष होगा, वाणी से नहीं। वाणी से विस्तार हुआ है, प्रत्यक्षता नहीं हुई है। इसलिए वाणी के साथ साथ हम सबको अपने संस्कारों की शुद्धता के आधार से अपने व्यवहार में, व्यवहार माना चलन, चेहरा, जब हमारे चलन और चेहरे में वो दिव्यता आएगी, सरलता आएगी, नम्रता आएगी, बड़े शुभ भावनाओं का आभा मंडल बनेगा, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। और बाबा की प्रत्यक्षता होना माना इस कलयुगी संसार का परिवर्तन होना। जहां इतना दुख बढ़ रहा है, इतनी अशांति है, निराशा है, कल क्या होगा किसी को पता नहीं है, ऐसे कलयुग को परिवर्तन करने के लिए बाबा कहता है विनाश तो मैं कर दूं, लेकिन जो नई दुनिया आने वाली है उसमें चलने वाले मेरे बच्चों को तैयार होना है। तो हम सब तैयारी करें, अपने संस्कारों को बड़ा पवित्र, शुद्ध, आदि और अनादि संस्कारों को इमर्ज करके बनाएं। उसके लिए ब्रह्मा बाबा के दो संस्कार फॉलो करो, एक साक्षी, ये ऐसा है, वो ऐसा है, बाबा ने कभी वर्णन नहीं किया, साक्षी दृष्टा के संस्कार बना लिए, सब कुछ देखते हुए उनके ऊपर उसका प्रभाव नहीं आया, और दूसरा उपराम, ऊपर ही रहे, न्यारे प्यारे रह करके बाबा के साथ उपराम बन करके रहे। तो हम सब ब्रह्मा बाबा के संस्कारों को अपने जीवन में धारण करें, चेक करें कि ब्रह्मा बाबा क्या थे और मैं क्या हूं, और मुझे कितनी और मार्जिन है आगे बढ़ने की। तो हम संपन्न और संपूर्ण बन करके बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बन सकते हैं, लेकिन संस्कार शुद्धि, संस्कार परिवर्तन और व्यवहार शुद्धि की बहुत आवश्यकता है। ओम शांति।
Yeah.
सभी अपने भ्रकुटी की कुटिया में अपने चमकते हुए चैतन्य सितारे का अनुभव करो। एक लाइट माइट संपन्न मैं बहुत मूल्यवान हीरा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान, अपने दिव्य बुद्धि के विमान से बाबा की समीपता का अनुभव करो। मैं आत्मा अपने प्यारे पिता के साथ कंबाइंड हूं, सर्वशक्तिमान परम पवित्र उस ज्ञान सूर्य बाबा के साथ मैं आत्मा उनकी समानता का अनुभव कर रही मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति में ही स्थित होकर बाबा की दिव्य शक्तियां इस पूरे ग्लोब पर फैल रही है। शांति शक्ति पवित्रता के वाइब्रेशन हर आत्मा तक पहुंच रहे हैं। मनसा सेवा को पवित्र संकल्पों का आभा मंडल बनाओ। चारों ओर पवित्रता की किरणें फैलाओ। सभी अपने तपस्वी स्वरूप में पूर्वजपन का सम्मान लेकर वृक्षपति बाप के साथ कामधेनु माँ और कपल मुनि बाप के साथ मैं तपस्या कर रहा हूँ। मैं तपस्वी आत्मा पूरे वृक्ष को, पूरी वंशावली को प्रकृति सहित सर्व तत्वों को, सर्व मनुष्य आत्माओं को सूक्ष्म सकाश दे रहा हूं। हर एक आत्मा को पूरी वंशावली को सर्च लाइट मिल रही है। सभी अपने पूज्य स्वरूप में अनेक आत्माओं की इष्ट देव आत्मा हूं। इष्ट देवी हूं। अपनी दृष्टि से अपनी श्रेष्ठ भावनाओं से अपनी संपन्न स्थिति से हर एक भक्त आत्मा को प्रसन्न कर दो। भरपूर करो। कितना प्यार से पुकार रही हैं, कितना याद करती हैं, सब पर नजर डालो, वरदान दो।